आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 80। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्, लक्ष्मी निवास निलयम्, विलीन विलयम्, निधाय हृदि वीरम्, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है और उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी के प्रवचन हुए हैं, इस आत्मानुशासन प्रवचन द्वितीय पुस्तक उसके पृष्ठ संख्या 85 पर हम आगे 85। यहाँ 105 का हम प्रवचन देख रहे थे, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है 85 पृष्ठ पर। ओ शरीरता में शाश्वत आनंद, यानी हम स्वयं अशरीरी है, अशरीरी होने में जैसा हमारा आनंद स्वरूप है वैसा पूर्ण प्रकट हो जाता है, जैसे वो शाश्वत है, कायम टिकने वाला। वो शरीरता यानी सिद्ध भगवान हो गए ना, अभी संयोग में भी शरीर नहीं रहा, संयोग में शरीर रहते हुए भी हम तो अशरीरी है, फिर भी अभी संयोग है, वहाँ राग भी है विद्यमान और मिथ्या दृष्टि को तो उसमें और मैंपना भी पड़ा हुआ है, तब तक उसको आनंद का अनुभव नहीं है। देखो भैया, वास्तव में सुख मुक्ति में है और मुक्ति अपनी पर्याय है ना, अपनी ही पर्याय में, और इस शरीर के त्याग से मुक्ति मिलती है। शरीर यानी वो ना कार्मण शरीर रहता है, ना तेज शरीर रहता है, ना ये औदारिक शरीर रहता है। अनंत आनंद इस शरीर के त्याग से मिलता है, तो इस अनंत आनंद को नहीं चाहता क्या? यानी त्याग करना यानी आत्मघात करके मर जाना, उसको शरीर का त्याग नहीं कहा। पहले मैं पहले श्रद्धा में होगा कि मैं इससे जुदा हूँ, मैं उसके त्याग स्वरूप ही हूँ, और फिर उससे भेद ज्ञान करके अपना अनुभव होगा, और फिर क्रम से अरिहंत दशा होगी, फिर सिद्ध दशा होगी, तो शरीर के पूरा संबंध छूट गया तीनों शरीरों से। लोक में कहावत है, तुझे आम खाने से काम या पेट गिरने से काम, तुझे अनंत आनंद चाहिए या यहाँ के तर्क वितर्क चाहिए, क्योंकि जीव सोचता है मैं ज्यादा होशियार हूँ, इसलिए जो कहा है उसको तो सीधे सरल हृदय से स्वीकार करना नहीं चाहता है, उसको विरोध कैसा हो जाए हाँ इसके लिए सोचता है, ये तर्क लगाता है और अपने को अधिक होशियार समझता है। देखो, समझने वाले की जुदी पद्धति होती है, उसको भी प्रश्न उठते हैं पर समझने के लिए होते हैं, और कोई ऐसे प्रश्न उठे तो ये हाउ इज इट पॉसिबल, यानी ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये विरोध विरोध का अंदर से टोन रहता है उसमें। इसलिए कहते तुझे आम खाने से काम या पेट गिरने से काम, तुझे अनंत आनंद चाहिए या यहाँ के तर्क वितर्क चाहिए, इस शरीर के विकल्प से मुक्त होने पर क्या कहता है? पहले में पहले शरीर के विकल्प से मुक्त हो जाएगा, सशरीर अवस्था में भी आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद है, नहीं अरियंत की अपेक्षा से बात करें, सशरीर अवस्था है, अनंत आनंद उनके भी प्रकट हुआ है, फिर यह शरीर बहुत देर तक टिक न सकेगा, अभी जितनी आयु बाकी उतना शेष उसका संबंध रहेगा, सर्वदा के लिए मुक्त होकर यह आत्मा अनंत आनंद का अनुभव करेगा। कितने काल तक? तो अनंत 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 काल तक। इस शरीर का मिलाप जो होता है, यह दुष्ट जनों के मिलाप की तरह जान, जैसे दुष्टों से कोई पाला पड़े तो अंदर वो नहीं चाहता है, कैसे उससे छुटकारा मिले इसकी सोचता है, ऐसे ही शरीर का संबंध है। तभी ये तो अपने कुछ काम की चीज ने उल्टा इसका लक्ष्य करके मैं स्वयं दुखी हो रहा हूं, इस तरह से उससे भेद ज्ञान सतत चलना चाहिए। पहले मैं बताया ना, उसके विकल्प पहले छूटेंगे, शरीर संबंधी विकल्प छूटेंगे। मुझे ज्ञान में आत्मा के साथ एक ऐसा दुष्ट लगा है कि शांति नहीं मिल पाती। मैं तो ज्ञानमय हूं तो अपने को ज्ञानमय लग रहा है कि मैं काला गोरा हाइट वाला ठिंगना बहुत, मैं दुबला हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं रोगी हो गया, तो अपने को शरीर रूप अनुभव हर समय चल रहा है और दिन रात उसी के विकल्प चल रहे हैं। उसके लिए हम कितना योगदान देते हैं, उसके विकल्पों में रहते हैं, या कहते हमारा कितना समय जाता है उसके लिए, और अपने मैं ज्ञान आनंद मैं हूँ इसके लिए कितना समय जाता है, इसका अगर हम हिसाब लगाएंगे तो नहीं के बराबर, उसका विचार तक नहीं आता है उसमें। आगे शरीर कहने से सब आगे उसके अंदर। तो कि मुझ ज्ञान में आत्मा के साथ एक ऐसा दुष्ट लगा है, वो रागादि भी उसके निमित्त से ज्यादा हो रहे, उसका लक्ष्य कर करके कि शांति नहीं मिल पाती। वह कौन सा दुष्ट है जो मेरे साथ ऐसा चिपका हुआ है कि मुझे छोड़ता ही नहीं है? वो नहीं अपने को छोड़ रहा है कि हम उसको नहीं छोड़ रहे वो भले अपने साथ पड़ा रहे ना, हमने उसको ये मैं हूं ऐसा नहीं माना, मेरा है नहीं माना, तो वो तो क्या जड़ है, उसको कोई दुख होने वाला नहीं है। ये जीव ही ऐसा है कि उसका लक्ष्य कर करके स्वयं दुखी हो रहा है, मान भी वही रहा है, दुखी भी वही हो रहा है। शरीर तो जड़ है, उसमें क्या है? एक भव में गुजर जाऊं तो दूसरे भव में फिर आगे तैयार है। इस शरीर का मिलाप दुष्ट जनों के मिलाप की तरह, और वो मिलाप भी हमारे अपने भावों से हो रहा है। मिथ्यात्व चालू है, राग द्वेष चालू है, तब तक नया नया शरीर मिलता रहेगा। शरीर की अरम्यता यानी वो रम्य नहीं है। देखो इन बातों में एक भी बात सामने आए तो विवेकी पुरुष पसंद नहीं करते। कौन कौन से? अपवित्रता, केवल अपवित्र चीज होगी तो हम उसको नहीं पसंद करेंगे, दूर करेंगे। डर, अपमान और पाप, यानी इनमें से कोई एक भी चीज अगर होती, एक भी बात ज्ञानियों को पसंद नहीं है। और इस शरीर में ये सबकी सब बातें पड़ी हुई है। श्लोक में तो यही आई थी ना बात, कि वो अपमान है, डर है, अपवित्रता, पाप सब। हाँ, डर ने भय वहां लिखा था। कौन सी? हाँ, ये तो नहीं पसंद है। और फिर शरीर में तो ये सब चीजें हैं, तो शरीर पसंद है। देखो देखो श्लोक निकालो, कल पढ़ा था ना, तो अभी थोड़ा 81। हमें भी बात सही है, आपको पसंद नहीं होता तो आपको शरीर के प्रति भी पसंद नहीं होता। ज्ञानी इसलिए कहा कि उसने शरीर से जुदापन जान लिया है, उसने इसको सच में अपवित्र समझा है। तो हम आप सब इससे एक भी हो तो हम इसको छोड़ देते हैं। उन तो ऐसे अभिज्ञानी नहीं, अभी अविवेकी ऐसे है, ये सारी की सारी चीजें शरीर में है फिर भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं। फिर से देखो यहाँ, यहाँ क्या लिखा है? गर्भ से लेकर मरण पर्यंत क्या क्या है मुदा, इसमें क्या क्लेश? सेकंड लाइन में देखो श्लोक के, अशुचि, भय, निकारादि बहुलम। यानी अशुचि नहीं, अपवित्रता, क्लेश है, भय है, अपमान है, ये बहुत अधिक में है। देखो यही बात यहाँ नीचे भी लिखी होगी, कल हमने अर्थ में पढ़ा था ना, ये चारों बातें इसके अंदर है। कितना नंबर है ये? 105। हाँ मैं इसमें से अर्थ आपको बताती हूँ। देखो ये शरीर जो है वो पूरा ही शरीर, गर्भ से लेकर, मैं अभी ढूंढारी में से डायरेक्ट हिंदी करके बता रही हूँ, मरण पर्यंत, वृथा यानी बेकार का, बिना वजह का क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव, पाप, इसमें बहुत पाए जाते हैं। ऐसा है शरीर, कैसा है तो इन सब चीजों उसमें पाए जाते हैं। अब ऐसा शरीर अच्छा ठीक से विचार करके ज्ञानियों के लिए ये त्यागने योग्य है। तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा, क्योंकि इसके त्याग से क्या होता है, मुक्ति होती है। जिसके त्याग से मुक्ति होती है तो परम आनंद उत्कृष्ट चीज मिलती है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा तो जो इसका त्याग नहीं करेगा, ये कह रहे। तो भावार्थ में ये बात उन्होंने लिखी है कि दुख, अपवित्रपना, भय, अपमान, पाप, इसमें से एक एक भी अगर थोड़े भी होते हैं तो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो विवेकी यानी, विवेकी का अर्थ होता है विचार करने वाला, ज्ञानी यानी वो समय दृष्टि ज्ञानी की बात छोड़ दो, विवेकी यानी जिसको थोड़ा बुद्धि है, विचार कर सकता है, तो उसको छोड़ देता है। तो कहते शरीर आदि में तो ये सभी और बहुत अधिक प्रमाण में और हमेशा पाए जाते। ये अपवित्रता वगैरह जो हमने लिस्ट पढ़ी, वो अगर थोड़े भी हो और कभी कभी हो तो भी उसको त्याग देते हैं स्याने लोग, यानी वो ज्ञानी वाली छोड़ दो, स्याने लोग, आप हम स्याने हैं ना, तो हम तो कहते इसमें तो ये सभी बातें हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत है, और कभी कभी नहीं है, सदाकाल है, फिर भी उसको नहीं त्यागते। तो अभी स्याना समझना कि नहीं समझना, ये बात है। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं अपना, ये हो गया ना शरीर की अरम्यता। हाँ थर्ड लाइन, ये शरीर में तो सबकी सब बातें पड़ी हुई है ना, तब क्या यह शरीर मोह और प्रेम करने के योग्य है, जो समस्त अवगुणों की खान है। ये समस्त अवगुण जो गिनाए वो सब भी पड़े उसमें, उससे लाभ कुछ भी नहीं है, वृथा है, है न? इसके छोड़ने से ही और वैभव संपदा व समस्त पर्वतों के त्याग से ही मुक्ति होगी। इस शरीर के मिलाप को भी दुखमय जानकर इसका मोह तो छोड़ना ही श्रेयकर, श्रेयकर यानी कल्याणकारी व सुखमय है। अब 106 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, उसको पहले जांच लेते हैं। कुबोध रागादि विचेष्टितैः फलम् त्वयापि भूयो जननादि लक्षणम् प्रतिहि भव्य प्रतिलोम वृत्ति चाहिए, वृत्ति भी वृत्ति भी ही। हाँ वो आड़ी लाइन करना ना, तो वृत्ति भी ही।
और बी के बाद विसर्ग,
वो तो आगे हुआ ना, ध्रुव के ऊपर चला गया, वृत्ति भी ध्रुवम। हाँ वो नहीं देते तो चल जाता है, क्योंकि डैश करके उन्होंने एक शब्द बनाया उसका, फलम प्राप्स्यसि तद विलक्षणम। पढ़ेंगे विष्णु। कुबोध रागादि विचेष्टितैः फलम् त्वयापि भूयो जननादि लक्षणम् प्रतिहि भव्य प्रतिलोम वृत्तिभिः ध्रुवम् फलम् प्राप्स्यसि तद्विलक्षणम्। इसका अर्थ देखते हैं विटोडोमल जी क्या कहते हैं। हे भव्य, तैहि यानी तूने ही, कुज्ञान रागादि रूप विरुद्ध चेष्टा नहीं करी, यानी कुज्ञान अज्ञान और रागादि, ये कैसे विरुद्ध उल्टी सब प्रयत्न किए, वो चेष्टाओं के द्वारा इन प्रयत्नों के द्वारा बारंबार जन्म मरण आदि है लक्षण जा का ऐसा फल पाया है। भव्यों को कहते कि तूने अपने अज्ञान राग द्वेष आदि के कारण विरुद्ध उल्टी सब चेष्टाएं की, इसलिए जन्म मरण आदि का फल पाया है। तो अब तू ऐसी प्रतीति करी जो इनते विपरीत प्रवर्तिनी करी तिस फलतय, विपरीत लक्षण लिए जो फल ताको निश्चय करी तू पावेगा। यानी अभी तो ऐसे प्रतीति करके ऐसी प्रवृत्ति कर जो पहले की थी ना उसके उल्टा, यानी सही। पहले उल्टी प्रवृत्ति की थी, राग द्वेष किया था, अज्ञान था, कुज्ञान था, अब उसके उल्टे प्रवर्तन कर, यानी सही कर, सही प्रतीति के साथ अभी सही प्रवृत्ति कर, तो तुझे फल भी उल्टा मिलेगा। पहले का मिलता क्या था? जन्म मरण। अभी उसका उल्टा फल यानी मुक्ति मिलेगी। भावार्थ, लोक विषय भी जिस कारण ते जो कार्य निपजय तिस्ते उल्टा कारण ते उल्टा ही फल निपजय। यानी लौकिक में भी देखते हैं जिस कारण से जो कार्य निपजता है उत्पन्न होता है, उल्टे कारण से उल्टा कार्य होता है। समझ में इसका अर्थ आसान है ना? जैसे गर्मी तय जो रोग होई तिस्ते उल्टा शीतल वस्तु तय तीस रोग का नाश होई। गर्मी के कारण जो रोग होता है तो शीतलता करने से वो नाश हो जाता है। ताते यानी इसलिए हे भव्य, तय यानी तूने अज्ञान असंयम करी, अज्ञान और असंयम के द्वारा जन्म मरणादि दुख रूप फल पाया है। अभी तक क्या किया है? जन्म मरण के ही फल पाया अनादि संसार से। बहुरी जिस कारण तई एक ही बार कार्य निपजय तहां तो भ्रम भी ऐसा होई जो और ही कारण तई यह कार्य भया होगा। क्या कहना चाहते हैं? कभी कोई कार्य बन गया, कोई घटना बन गई, तो उसमें तो ये संदेह हो सकता है अरे इसके कारण हुआ कि उसके कारण, यानी कारण के बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं अरे कुछ अन्य कारण के कारण ये बात हुई होगी। क्या कहते? फिर पढ़ती हूँ उसको। यानी कोई कार्य एक ही बार हुआ है, एक ही बार जो कार्य हुआ है उसके बारे में तो उसके कारण के संबंध में हमको संदेह हो सकता है अरे इस कारण से कार्य हुआ है कि किसी अन्य कारण से हुआ है, क्योंकि वो एक ही बार हुआ है। अब ये जन्म मरण का कार्य कितने बार हुआ है? ये कह रहे सो संसारी जीवनी के बारंबार अज्ञान असंयम ही का सेवन दिखे है। वो बारंबार यही करते आया है क्या? अज्ञान और असंयम, और इनके जन्मादि दुख होता दिसे है, और वो भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। ताते यहाँ भ्रम भी नहीं, यानी ऐसा कोई भ्रम ही नहीं है, ये निश्चित है कि इसके अज्ञान और राग द्वेष जो है उसी के कारण, अज्ञान असंयम के कारण ही इसके जन्म मरण हो रहे हैं। जैसे जिसको जब खाए तभी रोग उपजे तो जानिए यही इस रोग का कारण है। हम देखते हैं कोई एलर्जी होती है, कुछ खाने पर कोई रोग उत्पन्न होता है, जिसको किसी खांसी होती है या कोई एलर्जी स्किन में होती है, तो ये खाने से ये रोग होता है, ये तो नक्की हो जाता है। बहुरी जो औरणी ही के भया होई तो भी भ्रम होई। सो तू ही विचारी मैं कैसो परिणम हो, कैसा फल पावऊ हो, यानी मैं किस रूप परिणमता हूँ और किस रूप से फल पाता हूँ, तो वो विचार करके देख। तातई जो तो को यहू फल बुरा लागे है, जैसे अज्ञान आदि रूप परिणमे है तैसे परिणमना छोड़ी। यानी यदि तुझे ये फल बुरा लगता है तो अज्ञान को छोड़ दो। बहुरी अज्ञान और असंयम से उल्टा क्या है? सम्यक ज्ञान चारित्र है, ताका सेवन किए यानी उसको उत्पन्न करना, उसका सेवन करना, तिस जन्मादि फलतई उल्टा अविनाशी सुखरूप मोक्ष फल पाइए है। पहले जो कार्य होता था उसका उल्टा हो गया। सो यहाँ भी भ्रम नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। जाते ही क्योंकि सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन हारे थोड़े है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सेवन करने वाले थोड़े है, और उनके तत्काल ही अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिटने तई किछु सुख हो है। यानी धर्म का उधारी का धंधा नहीं है, जैसे पुण्य करो और फिर भविष्य में कभी उसका फल मिल जाता है ना। हमारा जो उदय हो रहा है पुण्य का, तो पहले बंधा हुआ था। धर्म का फल तत्काल होता है। क्या होता है? सुख की उत्पत्ति होती है। यहाँ लिखा ना तत्काल ही, अज्ञान असंयम जनित आकुलता मिट जाती है और उतने निराकुलता रूप वहां सुख होता है। बहुरी, बहुत सेवन तय बहुत सुख होता दिसे है। किसका सेवन? सम्यक ज्ञान और चारित्र का। तातय, जैसे कोई औषधि का सेवन किए रोग घटता भासई, तो तहां जानिए इसके सेवन तय सर्व रोग का भी नाश होगा। यानी औषधि सेवन पर रोग थोड़ा कम हो जाता है तो ये पता चलता है कि ये तो पूरा रोग मिट सकता है। तो इसे यहाँ भी निश्चय करना, ये क्या कहना चाहते हैं? जिसने सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट किया है उसके यहीं पर उसके निराकुलता सुख होते हुए दिखाई देता है, तो ये निश्चित हो जाता है। इसी विधि से और आगे बढ़कर उसको पूर्ण अनंत सुख मिल सकता है। तैसे यहाँ भी निश्चय करना, सम्यक ज्ञान चारित्र के सेवन तय सर्व दुख का नाश होगा, तातई इनका सेवन करना युक्त है। अभी हम अपने यहाँ प्रवचन पढ़ेंगे। देखो अभी वो श्लोक जरा पढ़ो तो क्या अभी जो पढ़ा ना अर्थ, कुबोधने कुज्ञान अज्ञान राग आदि विचेष्टितई ही चेष्टाएं की विपरीत चेष्टाएं की, उसका फल क्या है? त्वयापि, यानी त्वया यानी तूने की, भूयो जननादि लक्षणम, क्या फल हुआ? जननादि जन्मादि लक्षण उसके फल मिला। प्रति ही भव्य, भव्य को संबोधन करते हैं। प्रतिलोम, ये अनुलोम यानी एक से जो आगे कंटिन्यूस और उल्टे क्रम से, उसको प्रतिलोम कहते हैं। यानी ऊर्ध्व बात करनी है, प्रतिलोम वृत्ति यानी अभी उल्टी वृत्ति करनी है। पहले क्या रागादि थी ना, अज्ञान और रागादि, अभी सम्यक ज्ञान और संयम। पहले रागादि लिया, संयम लिया, अभी संयम लेते हैं। उनके वृत्ति के द्वारा ध्रुवम फलम प्राप्स्यसि तद विलक्षणम, पहले जो फल था उसके विपरीत लक्षण वाला ऐसा फल तू निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। अब हम अर्थ यहाँ अर्थ नहीं प्रवचन देखेंगे। 85 पेज अपना जो प्रवचन पुस्तक जो है आत्मानुशासन। संसार प्रक्रिया से विपरीत चर्या का अनुरोध, चर्या यानी अभी यहाँ वृत्ति आचरण, अज्ञान और रागादिक भावों की चेष्टाओं से, चेष्टा ने उसके जो प्रयत्न किए जो कुछ कार्य किए, जो बारंबार जन्म मरण आदि फल पाया है, तब तो ऐसा कर कि जिस विधि से जन्म मरण के दुख का फल पाया है यदि उसका उल्टा चलने लगे तो संसार संकटों से विपरीत फल तुझे मिल जाएगा। संसार संकट तो मुक्ति रूप आनंद तो फल मिलेगा। वह फल क्या है? वह फल शांति मोक्ष है। लोक में जिस कारण से जो कार्य भी उत्पन्न होता है लोक में जिस कारण से जो कार्य भी उत्पन्न होता है उससे उल्टा कारण मिलने से उल्टा ही फल प्राप्त होता है। जैसे कर्मों से कोई रोग हो जाए तो उस रोग को मिटाना किसी औषधि से ही होगा। इसी तरह मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग से जो संसार का परिभ्रमण चलाया है इसके विपरीत अपनी परिणति हो तब संसार के भ्रमण मिट सकेंगे। हे भव्य जीव, अज्ञान और असंयम से जन्म मरण आदि दुख रूप फल पाया है सो यह बार बार पाया है। ये बात आई थी ना, एक बार हो जाए तो वो पृष्ठ संख्या 86 नया पैराग्राफ फिर पढ़ते। हे भव्य जीव, अज्ञान और असंयम से जन्म मरण आदि दुख रूप फल पाया है सो यह बार बार पाया है, एक बार नहीं अनंतों बार। यदि एक बार भी धोखा हो जाए तो उसमें यह अज्ञान भी न बैठेगा कि मुझे इस बात से धोखा हुआ है, परंतु बार बार अज्ञान और अविरति के परिणाम करता है और उनके कारण बार बार जन्म मरण आदि दुख भोगता है। तो अब भी कुछ संदेह है? यानी ये तो निश्चित हो गया ना, कारण उसका नक्की हो गया। एक बार कोई विरुद्ध काम हो जाए तो न भी पता रहे उसका, किंतु जब बार बार तू अपनी विपरीत परिणतियों से धोखा खा रहा है तब संदेह की बात तो कुछ भी नहीं रही। तू मोह करता है, इससे संसार में रूलता है। कषाय भाव करता है, इससे दुखी रहा करता है। अब तो ऐसा कार्य कर कि जिससे संसार के समस्त संकट दूर हो। जैसा कार्य तू करता आया है उसके विपरीत करने लगा, करने लग चाहिए ना, लग करने लग। करने लगो भी हो ठीक है। मोह करता आया तो अब निर्मोह वृत्ति जगा, ये जगा जैसे लगा किया उन्होंने। निर्मोह वृत्ति से सांसारिक संकट दूर हो गए। विपरीत करने लग जाके इसलिए उसने लगा लिख दिया। क्लेश निदान की स्पष्टता होने पर भी प्रमाद करने पर खेद। ये निदान रोग का निदान इन्हें अभी डायग्नोस हो गया, अभी क्लेश का निदान हो गया, उसका कारण समझ में आ गया। तो क्लेश निदान की स्पष्टता होने पर भी प्रमाद करने पर खेद। जब कोई रोग बार बार हो जाता है तब तो यह निर्णय हो जाता है कि मुझे इस कारण तकलीफ हुआ करती है, क्योंकि वो तो ऑब्जर्वेशन होता है ना, कब होता है, क्या कारण होता है, क्या खाया था उस दिन, क्या किया था, तो उसका कारण पता चल जाता है। कभी कदाचित कोई एक बार खाए और उसमें हो जाए बीमारी, तो भले ही उसमें निर्णय न हो सके कि मैंने उटपटांग खाया, और जितने बार खाया उतने बार रोग बना, तो उसमें अब संदेह नहीं होना चाहिए कि मुझे यह रोग क्यों हुआ। किसी को किस चीज की एलर्जी होती है, वो खाया और यहाँ शरीर पर वो तो जो यह होता है ना अर्टिकेरिया से गांधी रैशेस हो जाते हैं, तो पता चलता है कि इसके कारण हो रहा है। इसी प्रकार इन संसारी जनों ने बार बार अज्ञान और असंयम का सेवन किया है और बार बार ही जन्म मरण के दुख भोगे हैं। अब तो ये नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई जब इमली खाए तभी देह में दर्द हो तो उसे यही निर्णय रहेगा कि इमली के खाने से ही यह वायु का दर्द हुआ है, भ्रम तो नहीं रहता। वो होता है ना जॉइंट स्वेलिंग हो जाता है या अन्य जो कोई प्रॉब्लम होती है खट्टा खाने से। यदि दूसरा कोई खाया करे तथा उसको रोग होवे तो भी भ्रम रह सकता है, पर खुद पर कोई बात बार बार बीतती है तो फिर उसमें भ्रम का क्या कारण है। अब यह निश्चय करो कि अज्ञान और मोहरूप परिणमन करने से तो क्लेश होता है, और अब इसके विपरीत ज्ञान व्रत संयम रूप परिणमन करे तो नियम से क्लेश मिटेंगे। ज्ञान और व्रत में कॉमा चाहिए क्या? जिन परिणामों से संसार बढ़ा है उनसे उल्टा चले तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। स्वयं के प्रयोग का अवबोध, अवबोध यानी ज्ञान। यद्यपि मिथ्यात्व अज्ञान आदि खोटे भावों में रहने वाले लोक में अनेक जीव है और मोक्ष मार्ग में लगने वाले जीव थोड़े हैं, लेकिन तू अपने आप में अनुभव करके तो देख, यदि सत्य श्रद्धान सत्य ज्ञान और उस रूप ही उपयोग हो, ऐसी कभी वृत्ति जगती है तो तेरा कष्ट कम होता है या नहीं। यानी तू स्वयं प्रयोग करके देखना कि तेरा कष्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। ये तो तेरे अधीन बात है ना, और एक बार वो तो चख जाएगा आनंद, तो उसको तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। कम होता है तो जिस उपाय से कष्ट कम होता है उस उपाय में यह विश्वास पूरा रहेगा। ये विश्वास की कमी है, इसको लगता है अरे कुछ करने से होगा, क्या करने से, देह की कुछ अटपटी क्रिया करे, कुछ कार्य बाहरी करे तो मेरा मोक्ष मार्ग होगा, तो मेरे धर्म होगा, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास ही नहीं कि वो मेरे में ही होने वाला है सब कुछ। तो ये उपाय में यह विश्वास पूरा रहेगा कि यह उपाय पूर्ण रूप से बने तो कष्ट का नाम नहीं ले सकता। क्या कहते हैं, उपाय हमने थोड़ा किया और उसका अंदाजा आ गया तो हमें कितना ही कष्ट हमारा कम हो गया, निराकुलता हो गई, उतना आनंद आया, तो ये तो विश्वास हो गया ना कि इस कार्य को, इस जो हमने अभी अजमाया है उसको पूर्ण रीति से करेंगे तो पूर्ण सुखी हो सकेंगे। अब कष्ट के उपाय से विपरीत चल। अभी तक क्या किया, कष्ट के उपाय किए, उससे कष्ट ही होते रहे, अब उसके उल्टा करना है। देख तेरा आत्मा और आत्मा से संबंधित ये शरीर आदि पदार्थ और कल्पना किए गए वैभव परिजन, क्या कहा, मैं तो आत्मा मात्र हूं और इससे संबंधित ये शरीर आदि पदार्थ है और हमने कल्पना कर दी है ये वैभव मेरा, परिजन मेरी आदि, इनमें तू भेद कर। किसमें किसमें करना है, एक बाजू किसको रखना है, मैं स्वयं आत्मा ज्ञानमय, शरीर से लेकर बाकी सब कुछ पर है, इससे भेद ज्ञान करना है। हाँ, एक और राम हमारे कैलाशन जी के थे, एक पलडे में मैं इतना ही कहते थे और दूसरी पलडी में सारे अनंत जो, मुझे छोड़कर सारे अनंत जो, फिर पूरी लिस्ट बताते थे, स्त्री पुत्र परिवार से लेकर अरिहंत सिद्ध तक सबको रखना उसमें, दूसरे पलडे में अपना पारी पलड़ा भारी रखना चाहिए। वो फिर सारे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सारा धन वैभव जितना भी आप सोच सकते हो सारा दूसरे पलडे में, और इसका ये मैं वाला पलड़ा भारी लगना चाहिए, ये कहते हैं यहाँ के न। तेरा आत्मा और आत्मा से संबंधित ये शरीर आदि पदार्थ और कल्पना किए गए वैभव परिजन आदि, इनमें तू भेद कर। ये रागादि भी उसी में दूसरे पलड़े में रखना है सारे, कि मैं तो जीव तत्व हूँ, ये रागादि जो आश्रय तत्व मेरे से भिन्न है। छोड़ते न बने तो भी यथार्थ ज्ञान में कौन सा कष्ट है, तेरा वैभव कहीं चला जाएगा नहीं, जो जहां पड़ा है वहीं पर है, अभी ये घर कहीं से कोई लूट तो नहीं बैठे यहां पर, ये मेरा 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 कह रहे है, अपना मानना छोड़ देना, वो घर तो वहीं से कोई भागने वाला नहीं है, ये कह रहे यथार्थ ज्ञान में कौन सा कष्ट है। यह सब भीतरी तपश्चरण की बात है, यह बाहरी अंदर ही अंदर सब कार्य चलेगा। जो जीव यथार्थ ज्ञान बनाए रहता है अंतरंग में सबसे निराले, अपने स्वरूप अस्तित्व मात्र, मैं कितना हूं, मेरा अस्तित्व मेरा स्वरूप जितना है, इस ज्ञानानंद घन को, इस यानी वो मैं स्वयं अपने उपयोग में बसाता है, यानी उसी को जानते रहता है, ऐसा उसे पूर्ण निर्णय है तो उसके संकट अवश्य मिटेंगे। कार्य कारण योग, भैया एक यह तो एक गणित जैसा उत्तर है। यदि बीज बढ़िया है गेहूं का चने का और वातावरण भी उत्तम है तो प्रतिबंध के अभाव में बो देने पर उगेगा ही, और यदि बीज घुना है, घुना समझते ना, कीड़े ने खाया हुआ अंदर से, उसकी जो नाक सी होती है वो निकल गई है, यानी उसमें जहां से वो अंकुर फूटता है वो अगर निकल गया है, उपादान अयोग्य है, तो वह बीज बो देने पर भी उग नहीं सकता, यानी उगेगा तो अपने उपादान से, नहीं नहीं हमने पानी डाला हमने उसको बराबर, ये बातें वो निमित्त में चली जाती। जैसे अग्नि पर बटलोही में पानी चढ़ा देने से प्रतिबंधक के अभाव में वह गर्म हो ही जाता है, और ठंडे स्थान में रख देने से वह ठंडा हो जाता है। निमित्त निमित्त के योग में जो जिस तरह होना होता है वह होता ही है। तो यहां भी यह निर्णय करो कि मोह के करने से जन्म मरण की परंपरा बढ़ती ही है। तब यथार्थ ज्ञान होने पर मोह के छूटने से यह जन्म मरण की परंपरा दूर हो जाएगी। अपने हित के लिए तो ऐसा ही यत्न कर कि यह जन्म मरण की परंपरा, विषय कषायों के अभिप्राय, ये सब तेरे समाप्त तो हो जाए। अब कहते प्रवृत्ति की भावना अनुसारिता, भावना के अनुसार प्रवृत्ति होती। प्रवृत्ति समझते ना, यानी जो हमें भाव उठता है, वृत्ति का उठना, उसको प्रवृत्ति में लिया। शुभ भाव उठा या अशुभ भाव हुआ, वो ये प्रवृत्ति है। जो मनुष्य जिस तत्व की बार बार भावना करता है उसको उस तत्व की प्राप्ति होती है। अपने को कोई मैं मूर्ख हूं ऐसा बार बार विचारे तो रही सही बुद्धि भी बिगड़ जाती है। कोई अपने कुछ ज्ञान युक्त कार्य भी करता हो और यह समझता हो इसे मैं ठीक निभा ले जाऊंगा तो उसकी बुद्धि में कुछ विकास होता है। जो अपने को मैं तो दुखिया हूं, संसार में रुलने वाला हूं, ऐसा ही विश्वास में लिए रहे तो वह संसार में रुलेगा ही। क्या कहते, अपने को बार बार वही उसी रूप सोच रहे ना। जो सांसारिक समागमों से विरक्त यह मैं ज्ञान मात्र स्वयं ही स्वरूपतः सिद्ध और मुक्त हूं, स्वरूप से ही सिद्ध और मुक्त हूं ऐसा प्रतीति में लाए तो उसको मुक्ति निकट मिलेगी। यानी वो मैं स्वरूप से कैसा हूं ये पहले नक्की करना है। यानी अभी संसार में शरीर के साथ रहते हैं, अभी रागादि विद्यमान होने पर भी मैं इनसे विरक्त में ज्ञान मात्र हूं और स्वयं अपने स्वरूप से ही मैं सिद्ध और मुक्त हूं। जब सिद्ध दशा होगी तो वो बात अलग, स्वभाव से मैं ऐसा ही हूं। ऐसे प्रतीति में लाए, श्रद्धा में लाए तो उसको मुक्ति निकट मिलेगी। क्योंकि अभी इसका अर्थ है श्रद्धा में लाए ने उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी उसकी मुक्ति निकट है। कभी कभी नाटकों में नाटक करने वाले पुरुष जब अपने आप को भूल जाते हैं और जिसका पाठ किया है उसी रूप अपने को मान लेते हैं तो वे यदि किसी को मारने का पाठ कर रहे हैं तो मार ही देंगे। क्योंकि अपने आप को भूल गए ना कि मैं अमुक हूं और मैं तो यह नाटक कर रहा हूं। जैसी अपने में भावना बनाई तैसी इस पर गुजरती है। सद्भावना, कोई पुरुष किसी भी कठिन स्थिति में ऐसी भावना बनाए मैं लाखों करोड़ों पुरुषों से अच्छा हूं, मुझे सर्व साधन प्राप्त है, धर्म के लिए मुझे अवसर है, तो वह कठिन और दरिद्र स्थिति में भी अपने को प्रसन्न रखता हुआ निभा ले जाएगा। और कोई धनिक संपन्न होकर भी तृष्णावश अपने को यूं निरखता रहे मैं तो बड़ा दुखी हूं, मेरी आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं होती है, एक न एक संकट मेरे सामने है, तो वह पाए हुए समागम का भी सुख नहीं ले सकता। तो अपने को जिस रूप विचारता है वह अपने को उस रूप ही परिणमा लेता है। ज्ञानी पुरुष अपने को निरंतर ज्ञानमय प्रतीति में लिए रहते हैं। इसी कारण उनका ऐसा प्रकाश है, वे किसी भी समय में भ्रम में नहीं आते हैं, किसी के बहकाए नहीं बहकते। ऐसा नहीं लगता कि वहां तो इतने लोग इसको मान रहे हैं और हम तो इतना दो चार ही लोग मान रहे हैं तो वो सच होगा कि नहीं होगा। पुस्तक की लाखों प्रतियां खपती है तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई भ्रमणा नहीं होती।
हाँ,
हाँ देखो, सुख दुख की निर्णायकता, निर्णायकता, निर्णायक यानी उसका निर्णय हो जाना। जिसके सम्यक वो खोड़ो हलंत चाहिए, जिसके सम्यक ज्ञान जग गया है वह उसका अमिट ज्ञान है। अमिट यानी मिटने वाला नहीं है। सुख और दुख का फैसला इस ज्ञान भावना में है। यह मैं आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, ज्ञान और आनंद ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान मैं कहो, आनंद मैं कहो, ज्ञान घन कहो, शब्द तो अलग अलग हो गए, अर्थ वो भाव तो वही एक ही है कि यह मैं, यह मैं कहते हैं साक्षात मैं यहां विद्यमान हूं, ये बता रहे बार बार यह मैं कहते हैं। आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप हूं, सबसे निराला अकेला हूं। ऐसा नहीं कहा कि जीव ज्ञानानंद स्वरूप है वो सबसे निराला, जीव कहने से वो थर्ड पार्टी नहीं है, यहां पर मैं स्वयं हूं ऐसा बता रहे। और हरेक को अपने मैप की बात करनी है। सबसे निराला अकेला हूं, मेरा मेरे में ही उत्तरदायित्व है, यानी मेरे किसी भी अवस्था के लिए कोई अन्य जवाबदार नहीं है, और मैं स्वयं अपना स्वाधीनता से धर्म की शुरुआत और पूर्णता मोक्ष भी प्राप्त कर सकता हूं। तो मेरा मेरे में ही उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व समझते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। मैं अपने आप का ही स्वामी हूं। इस प्रकार जो अपने आप में अपने आप के एकत्व का निर्णय रखता है उसे संसार संकट नहीं है। जिसे अपने आप के स्वरूप का भान भी नहीं है, जिस शरीर में यह बस रहा है उस शरीर मात्र ही अपने को निरखता हो तो विपरीत बुद्धि होने पर इसको सारी बातें प्रतिकूल लगेगी, तब इसे क्लेश ही होगा। देखो ये शरीर में बस रहे उसके साथ संयोग है, वो शरीर रूप नहीं हुआ है, फिर भी अपने को कैसा निरखता है, कैसा देखता है, कैसा मानता है, तो क्या शरीर रूप, यही लिखा है ना। जिस शरीर में यह बस रहा है यानी शरीर का संयोग है, ये पहले तो पहले नक्की किया, तो उस शरीर मात्र ही अपने को निरखता है, यानी शरीर में बस रहा है पर मैं तो ज्ञानमय हूं, शरीर से जुदा हूं, पर ये अपने को ज्ञानमय को तो भूल ही जाता है, अपने को तो शरीर में ही मान लेता है, तो ये विपरीत बुद्धि है। तो विपरीत बुद्धि होने पर इसको सारी बातें प्रतिकूल लगेगी, तब इसे क्लेश ही होगा। आत्मन यानी मैं तो शरीर रूप नहीं हूं, तो आत्मन करके पूछ बुबला रहे। यदि सत्य शांति चाहते हो तो अपने आप को सबसे निराला ज्ञानानंद स्वरूप मात्र समझना ही पड़ेगा। किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया, मनीषा बहन है क्या, नलिन भाई है क्या, लक्ष्मी बहन है, क्योंकि वो तो कहे ना अपना कोई नाम ही नहीं है। नाम तो शरीर को रखा है, हमारे माँ बाप ने जो कोई रखा होगा वो रखा है, तो ये नाम से भी ऐसा एकत्व हो जाता है क्योंकि शरीर से एकत्व है। तो यहाँ कहते हैं आत्मन यदि सत्य शांति चाहते हो तो अपने आप को सबसे निराला और कैसा ज्ञानानंद स्वरूप मात्र समझना पड़ेगा। बाकी कुछ इसके अंदर रखना नहीं है, न शरीर को न रागादि को। इस सम्यक ज्ञान के अतिरिक्त संसार में अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे इसके संकट मिट सके। अज्ञान में जो भी यह प्रयत्न करेगा उससे इसके दुख ही बढ़ेंगे, दुख दूर न होंगे। यूं श्री गुणभद्रा आचार्य देव ने इस बात पर दृष्टि डलाई है कि दुख से तुझे दूर होना है तो जिन चेष्टाओं से दुखी होता हो उनसे तू विपरीत चलने लग तो तेरा दुख समाप्त हो जाएगा। तब किस प्रकार चले उसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं, 107 नंबर, अभी पहले श्लोक देख लेते हैं। दया दम त्याग समाधि संतते पथि प्रयाही प्रगुण प्रयत्नवान नयत्यवश्यम वचसाम प्रगुण प्रगुणम चाहिए हाँ प्रगुणम नयत्यवश्यम ये नयति अवश्यम वचसाम गोचरम विकल्प दूरम परमम किमप्यसौ पढ़ेंगे इसको दया दम त्याग समाधि संतते पथि प्रयाहि प्रगुणम प्रयत्नवान नयत्यवश्यम वचसाम गोचरम विकल्प दूरम परमम किमप्यसौ वंशस्थ इसका अर्थ देखते हैं स्वपर जीव की करुणा सो दया कहां से शुरू हुई दया अपनी तो अनादि से की नहीं और हम तो बहुत दयालु है दया धर्म का मूल है सब गाते तो है स्वपर जीव की करुणा सो दया हाँ दया धर्म का मूल है पर वो स्व की दया से शुरू होता है हाँ दोनों होगी ना पर जो स्व को नहीं जाए तो पर आया कहां से और इंद्रिय मन का वश करना सो दम और पर वस्तु विषय राख छोड़ना सो त्याग दया दम त्याग और वीतराग दशा रूप सुखी होना सो समाधि यानी अपने अंतरंग में लीन हो जाना वो समाधि क्या क्या कहा स्व पर जीव की करुणा सो दया इंद्रिय और मन को वश करना वो सो दम पर वस्तु में से राग छोड़ना सो त्याग पर वस्तु को छोड़ना नहीं कहा राग छोड़ने की बात की उसके बिना केवल छोड़ के कुछ नहीं होगा राग छोड़ेगा तो वो वस्तु भी छूटेगी और वीतराग दशा रूप सुखी होना सो समाधि इन्हीं की जो परिपाटी ताका मार्ग विषय तो यत्न सहित होता संता सुधा कपट रहित गमन करी यानी यत्न सहित होते हुए इस मार्ग पर तू गमन कर कैसे सरल परिणाम से कपट रहित होकर यहू मार्ग है सो तोकु वचन तय अगोचर और विकल्पनितय रहित ऐसो कोई परम पद है ताको अवश्यमेव प्राप्त करे है यानी ये मार्ग तुझे क्या प्राप्त कर देगा कि वचन से अगोचर और विकल्प से रहित ऐसा जो उत्कृष्ट पद उसकी तुझे प्राप्ति हो जाएगी भावार्थ जैसे कोई इष्ट नगर का सांचा मार्ग विषय सुधा चला जाए सुधा ने सीधा उस मार्ग पर चला जाए तो वह स्ट्रेट वह तीस नगर को पहुंचे ही पहुंचे तैसे जो मोक्ष का साचा मार्ग कौन सा है सम्यक ज्ञान चारित्र विषय गर्भित दया दम आदि विशेष उसके वो विशेषताएं बताए उसके विशेष इन्हीं विषय कपट रहित प्रवर्ते तो मोक्ष को पावे ही पावे मैं साधन करो और सिद्धि न होई ऐसा भ्रमते शिथिल मति हो क्या कहते हैं मैं तो प्रयत्न करूंगा और सिद्धि न होई तो मैं अभव्य हो तो मुझे ऐसा शंका करता है ना तो ऐसे ऐसे भ्रम करके शिथिल मत होना इस साधन तय सिद्धि अवश्य हो है यानी बिल्कुल विश्वास सही दृढ़ता से इस पर चलना ये कह रहे अभी प्रवचन को पढ़ेंगे 107 का 88 पेज पर सतपथ गमन का अनुरोध सतपथ दया इंद्रिय दमन ये दमन से ये दम शब्द है ना दमन त्याग समाधि इनके पथ में तू अपनी प्रवृत्ति कर इसकी जो परिपाटी है उस मार्ग में तू यत्न करता हुआ सीधा निष्कपट गमन कर यह मार्ग तो एक परम पद रूप है जो वचनों से नहीं कहा जा सकता इस मार्ग से तू अवश्य कल्याण का साधन पाएगा। दया नाम है अपनी और परजीव की करुणा करना। करुणा करने वाला जिस परिस्थिति का होगा, इसी प्रकार की छोटी और बड़े ढंग की करुणा उत्पन्न होगी। क्या कहा? ये करने वाला जैसा होगा उस जाति की करुणा होगी। अपने को भूख से दुखी मानने वाला दूसरे को खाना खिला के वो सुखी करना चाहता है उसको, तो ज्ञानी उसको सुखे, वो क्यों दुखी है ज्ञानी को पता है, अज्ञान से दुखी है, तो उसको सत मार्ग दिखाएगा उस। यहाँ लिखा ना, करुणा करने वाला जिस परिस्थिति का होगा उस प्रकार की छोटे और बड़े ढंग की करुणा उत्पन्न होगी। यानी जो लौकिक जो संसारी जन है, इसी प्रकार की किसी को पैसा देकर वो करना चाहता है, करुणा करना चाहता है, किसी को अन्न देकर करना चाहता है, किसी को कपड़े देकर करना चाहता है। ज्ञानी जन इन जीवों पर मौलिक करुणा करते हैं। मौलिक यानी मूल्यवान, उनकी जो थोड़ी वर्तमान शांति के लिए वचन विस्तार का सुख लूट लिया तो इससे जीव का पूरा तो न पड़ेगा। इस जीव का कष्ट सदा के लिए दूर हो ऐसा प्रयत्न करे तो यह इसका पूरा पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान थोड़े शब्दों से उसका सांत्वन करने से वो उसका दुख कायम के लिए नहीं मिटेगा, इसलिए ऐसा कोई तो प्रयत्न करेगी कि वो कष्ट सदा के लिए मिट जाए। ज्ञानी पुरुष जीवों के प्रति ऐसा चिंतन करता है, इनको ऐसी सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा ज्ञान जग जाए, जिस ज्ञान द्वारा यह अपने आप के यथार्थ स्वरूप को पहचान जाए। कोई दुखी है, कोई उसकी चीज नहीं हो, या कोई अपयश है, या जो कोई उसकी बात है, तो लौकिक में तो उसको सांत्वन किया जाता है शब्दों से, कुछ न कुछ उसको समझा बुझा कर। परंतु ज्ञानी तो क्या कहते हैं कि वो क्या सोचते कि इसको ऐसी सद्बुद्धि आ जाए, ऐसा इसका ज्ञान जग जाए, क्योंकि वो भी समझते हैं ये जो दुखी है वो अपने रागादि से दुखी है। उनको ऐसा ही वो उपदेश देंगे कि इन रागादि से जो जुदा अपने आप को चिंतन कर, स्वयं को ज्ञान में अनुभव कर, ये संयोगों के कारण तो दुखी नहीं है, तू जो दुखी है और वो अभी रागादि परिणाम है उसके कारण भी तुम दुखी नहीं हो, तुम तो उसको अपना मान के वो दुखी हो रहे। बाहर क्या उपदेश दिया जाता है? अरे शोक मत करना, ये जाना, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस तरह से। परंतु इनसे तो जुदा है, पहले ये बात नक्की करनी है। तो उसको क्या कहते हैं, इससे सद्बुद्धि आ जाए, इसका ज्ञान जग जाए, जिस ज्ञान द्वारा यह अपने आप के यथार्थ स्वरूप को पहचान जाए। क्योंकि वो सामने वाला जीव अपने को शरीर रूप समझ रहा है, अपने को वो संयोग रूप समझ रहा है, उसके कारण वो दुखी हो रहा है, इससे सदा के लिए संकट मिट जाएंगे। विदेह बनने में देह की उपेक्षा का मूल सहयोग। विदेह ने देह से रहित। देखिए यह तो युक्ति संगत बात है ना, कि जिससे प्रेम किया जाएगा वह अपने साथ लग जाएगा। यदि कोई अनिष्ट मित्र अपने साथ लग गया है तो उसका उपाय यह है कि प्रीति न करे, उपेक्षा भाव कर दे तो वह टल जाएगा। मेहमान है तो मेहमान नवाजी छोड़ दो, उसको निगलेक्ट कर दो, हाँ तो चला जाएगा। ऐसे ही जब हम शरीर से प्रीति रखते हैं, शरीर को अपनाते हैं, तब तक यह निश्चय समझिए यह शरीर मेरे साथ लगा रहेगा। यह शरीर को छोड़ेगा तो अगले भव में नया शरीर लग जाएगा। इस शरीर से यदि सदा के लिए मुक्त होने की इच्छा है तो इस शरीर से प्रीति न करिए। शरीर से प्रीति करते जाए और उससे मुक्ति चाहे, यह बात तो नहीं हो सकती। प्रथम कर्तव्य है जिससे हम डरना चाहते हैं उससे उपेक्षा कर दे। ज्ञानी जीवों पर ऐसी परम करुणा का भाव करते हैं, इन्हें सन्मति जगे, सन्मति सत्मति, और भेद विज्ञान प्रकट हो कि जिससे सदा के लिए संकट मिटे। कुछ उनसे कम ज्ञानी जीव हो तो वे कुछ व्यावहारिक अच्छे आचार विचारों में लगा देने की करुणा करते हैं। यानी एकदम जो ज्ञानी है वो तो पहले उसको भेद विज्ञान की बात सोचेंगे उनके लिए, और उससे जो कुछ नीचे के दर्जे के तो व्यावहारिक अच्छे विचार आचार विचारों में लगा देने की करुणा करते हैं, और बाकी कोई दयालु पुरुष दया करते हैं तो उनका जो ऐहिक संकट है, भूख होना, प्यास होना अथवा उसके रहने का कोई साधन न हो, तो उन बातों को लेकर उनके दुख दूर करते हैं, ऐसी उनकी करुणा जगती है। अब यहीं रुकेंगे हम, इससे हम डरना क्यों लिखे, दूर होना शायद होगा। ये डरना शब्द वहां नहीं योग्य है, क्योंकि सदा के लिए मुझ, हाँ, जिससे हम छूटना चाहते ऐसा करो ना। हम यही रुकेंगे अभी, 86 पेज पर एक पैराग्राफ हो गया हमारा, वहां छूट ना करो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।